आदरणीय आतम भाई जी, पिछले करीब 40 वर्षों से मधुबन बेहद घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद आपने प्यारे बाबा की उस बात को प्रत्यक्ष किया है कि बाबा को किचन में ऐसे बच्चे चाहिए जो योगी तो आत्माएं हो। तो आपने इतना पढ़ाई के बावजूद भी, इतनी अच्छी लौकिक करियर के बावजूद भी बाबा के यज्ञ में तोली डिपार्टमेंट को वर्षों से संभाला है और कर्मणा सेवा से कैसे हम नंबर वन ले सकते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपने अपने जीवन से दिया है। आतम भाई जी, लगभग 75 से भी अधिक देशों में बाबा की सेवाओं के लिए भ्रमण कर चुके हैं। आप यूथ विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और यज्ञ के तीनों ही स्थानों पर आप टोली डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता जो देखी है वो ये देखी है कि आपका बोलना बहुत कम है, लेकिन कोई भी पॉइंट, कोई भी ज्ञान की बात को गहराई में जाकर के मनन चिंतन करके उसके स्वरूप में प्रत्यक्ष करना या लाना, ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता हमने आज तक देखी है। मैं आदरणीय आतम भाई जी से नम्र अनुरोध करती हूँ कि पर वृत्ति की स्मृति द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति, इस विषय पर हमें गहराई में ले जाएं और मार्गदर्शन दें आदरणीय आतम भाई।
ओम शांति। पर वृत्ति के स्मृति द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति, ज्ञान के सागर शिव बाबा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना। घर गृहस्थ में रहते हुए शुद्ध प्रवृत्ति अनुभव करना, यही इस ज्ञान का लक्ष्य है। तो परिवृत्ति की स्मृति से हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। सबसे पहले वृत्ति किसको कहते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में टिको, तो पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति। उसमें जब हम स्थित हो जाते हैं तो दूसरी स्टेज है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो तीसरी स्टेज है आत्मिक दृष्टि, और आत्मिक दृष्टि जब पक्की हो जाती है तो चौथी स्टेज है आत्मिक वृत्ति। वृत्ति अर्थात आत्मा के भान में स्थित हो जाना। आत्मा के भान में स्थित होने की आदत बन जाना, नेचर बन जाना। तो परे वृत्ति अर्थात उपराम वृत्ति, इस साकारी दुनिया में रहते हुए भी इससे ऊपर अर्थात परे रहना, परम धाम रूपी घर में स्वयं को अनुभव करना, तो जितना हम ऊपर जाकर परम धाम में रहते हैं, घर में रहकर उसके वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं और उस घर पर अपना अधिकार जमाते हैं और उस घर के तरफ जब हमारा झुकाव होता है, लगाव हो जाता है, तो कहेंगे उपराम वृत्ति अनुभव करना। जब उपराम स्थिति हो जाती है तो ऊपर वाले राम को अर्थात निराकार राम को, बाबा को याद करना सहज अनुभव होता है। परवृत्ति अर्थात देह से न्यारी वृत्ति, गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मिक भाव आत्मिक वृत्ति सदा मेंटेन करना, उसको कहेंगे परवृत्ति। तो लौकिक में रहते हुए हमारी प्रवृत्ति में अलौकिकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। परवृत्ति अर्थात न्यारी और प्यारी वृत्ति, कमल आसन धारी बनकर जब हम रहते हैं तो न्यारे भी रहते हैं और सबके प्यारे भी रहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान का लक्ष्य ही है स्वयं सभी के साथ रहना है। लेकिन साथ रहते हुए भी अलौकिक वृत्ति को अपनाना है, दिव्यता को जीवन में लाना है, तभी हमारी प्रवृत्ति शुद्ध बनती जाती है। क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसी कृति होती है, जैसी कृति होती है वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो जब हम ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति अपनाते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो हमारे संकल्प और बोल और कर्मों में और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो सबसे पहली बात संकल्पों में परिवर्तन अनुभव करना। जब ऐसी परिवृत्ति रहती है तो हमारे मन में आत्मिक स्थिति की अनुभूति करने के कारण बहुत सकारात्मक शक्तिशाली संकल्प चलते रहते हैं। कहते हैं जैसे संकल्प वैसा व्यक्तित्व हमारा बनता है। तो मन में सदा श्रेष्ठ संकल्प चलते रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे पास बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं जो अच्छा खाना खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली सकारात्मक संकल्पों का भोजन मिलता है तो आत्मा शक्तिशाली स्वयं को अनुभव करने लगती हैं। इसलिए हमेशा हम स्वचिंतन में मगन रहें, परमात्म चिंतन में मगन रहें और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारे बोल भी होते हैं। बाबा ने जो हमारे लिए मर्यादाएं दी हैं, बोल के लिए जो नियम संयम हमें बताए हैं, उसको हमें धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। बोल में बल हो, कहते हैं वाणी में वीणा बसती रहे, वाणी हमारी अमृतमय वाणी हो, शुद्ध प्रवृत्ति के लिए हमारे बोल में वाणी में भी शुद्धता अनुभव होती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक दिन राजा सुबेदार और सिपाही घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने जाते हैं। घोड़े के पैर में घुंघरू होते हैं और वो घोड़ा एक स्थान पर बांध देते हैं और वो जंगल में शिकार करने तीनों चले जाते हैं। जब वो शिकार करके वापस आते हैं तो घोड़ा वहां नहीं होता है, तो राजा सिपाही को भेजता है कि जाओ घोड़े को ढूंढ के लाओ। तो घोड़े को ढूंढ के लिए एक रास्ते से जाता है, वहां एक अंधा व्यक्ति दिखाई देता है, तो सिपाही अंधे व्यक्ति को पूछता है, अंधे बाबा यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आए क्या? उसने कहा नहीं भाई। जब सिपाही वापस नहीं आया तो राजा ने सुबेदार को भेजा। सुबेदार उसी रास्ते से गया, अंधा व्यक्ति मिला तो कहने लगा बाबा जी यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आए क्या? उसने कहा नहीं भाई। जब सुबेदार भी वापस नहीं आया तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए गए, उसी रास्ते से गुजरने लगे तो अंधे बाबा बैठे थे, तो उन्होंने कहा महात्मा जी यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, घुंघरू की आवाज आए क्या? उसने कहा नहीं राजन। अरे आपको तो दिखाई नहीं देता है, आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? तो जवाब उसने दिया कि राजन आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो, क्योंकि जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो सम्मान से बोलता है, उनके बोल में ऐसा वो रिगार्ड रहता है, तो आपने मुझे महात्मा जी कहकर पुकारा है तो जरूर आप महान होगे, ये मैंने अनुभव किया। तो कहने का भाव है कि हमारे बोल में बहुत मिठास हो, शॉर्ट स्वीट और स्लोली, ये तीन बाबा ने शब्द कहे हैं। कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। तो बोल पर हमें विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात, जब ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति हमारे सारे दिन भर में रहती है तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं। भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कर्मों की खेती का गायन है। हमें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जाकर खड़ा रहना है और उनसे अपनी तुलना करना है। जैसे इनके स्थूल और सूक्ष्म कर्म श्रेष्ठ हैं, क्या ऐसे मेरे श्रेष्ठ कर्म होते जा रहे हैं? तो जैसे जैसे हम तुलना करते जाते हैं, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आने लगती है, साधारणता धीरे धीरे मिटने लगती है, कर्मों में दिव्यता आने लगती है। क्योंकि जब हम कमल आसन धारी होकर कर्म करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जब हम कर्ता भान को भूल जाते हैं, बाबा करण करावनहार हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ऐसा भाव जब हमारे मन में होता है तो स्वतः ही हमारे कर्मों में दिव्यता आने लगती है। और जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे संस्कार भी रॉयल होने लगते हैं। क्योंकि भविष्य का जो जन्म हमारा होगा वो संस्कारों के आधार से होता है। जितने रॉयल संस्कार, जेंटल संस्कार हमारे वर्तमान समय होते हैं, उसके आधार से ही संगम युग में ऐसे रॉयल फैमिली में, राजा महाराजा के घर फैमिली में हमारा जन्म होता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है, हमारे कर्म साधारण न हो लेकिन हमारे कर्मों में दिव्यता दिखाई दे। उसके बाद जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं तो शुद्ध प्रवृत्ति बनाने के लिए जो बाबा ने हमें दिव्य गुणों के आभूषण दिए हैं, वो दिव्य गुणों के आभूषणों को केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है लेकिन उनों को अपने चेहरे पर धारण करना है, जीवन में उतारना है। क्योंकि जैसे जैसे दिव्य गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, हमारे दिव्य गुण संपन्न चेहरे से दिव्य गुणों का दान देते रहते हैं। और जितना गुणों का दान हम देते हैं उतना गुणों का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए हमारा चेहरा कभी भी खाली ना हो, हमारे चेहरे पर कोई देखे तो किसी न किसी प्रकार का दिव्य गुण या किसी न किसी प्रकार के दिव्य भाव, शांति, प्रेम, पवित्रता के भाव हर किसी को अनुभव होते रहें। इसलिए एक स्लोगन लिखें, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे की सुंदरता मुस्कान है। फूल कितना भी सुंदर हो लेकिन वो मुस्कुराता होता है तो सबको अच्छा लगता है। तो बाबा जो माली हैं, बहने जो बागवान हैं, और हर रोज ये रोहे गुलाबों का बगीचा बाबा ज्ञान और योग के जल से सींचता है, तो बाबा माली देखना चाहता है कि मेरे बगीचे का हर फूल जो है, हर रूहानी गुलाब कैसा हो, मुस्कुराता हो। तो इसलिए हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे हमेशा दान करते रहते हैं। थोड़ा सा अपने पोस्ट और पोजीशन के नशे में नहीं रहना है। चेहरा हमें अहंकार के रूप में नहीं रखना है, लेकिन बहुत निर्माणता, नम्रता और मुस्कुराहट हमारे चेहरे से हर किसी को दिखाई दे, अनुभव होती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। कहते हैं फेस इज अ मिरर ऑफ अवर माइंड। हमारे मन में जो चलता है वो अपने चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है, और हमारे प्रसन्नता को चुराने वाले तीन चोर हमारे मन के दरवाजे पर बार बार आते हैं। कौन से तीन चोर? चिंता, भय और बोझ। किसी न किसी प्रकार की चिंता होना, किसी न किसी प्रकार का भय होना और किसी न किसी प्रकार का बोझ अनुभव करना, ये हमारे प्रसन्नता को छीनने का प्रयास करते हैं और हमारे मुस्कुराहट को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमें शुद्ध प्रवृत्ति बनाने के लिए, जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ रहती है, बाबा की याद रहती है, तो हम स्वयं को समझें कि भगवान के हम विशेष सैंपल हैं, चलते फिरते चैतन्य म्यूजियम हैं। हम घर में विचरण करते हैं, परिवार में, समाज में विचरण करते हैं, तो हमेशा समझे मैं चैतन्य म्यूजियम हूँ। म्यूजियम में कोई जाता है, उसमें हमें कुछ बातें पढ़ने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं और सीखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे स्वयं को जब हम चैतन्य म्यूजियम अनुभव करते हैं, तो हमारे श्रेष्ठ जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती है और अनेकों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी हम दे सकते हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र पर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, धारणा मूर्त जीवन बनाने के लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में स्वामान के सिंहासन पर बैठे रहना। ये मुख्य बात है, ये मूल बात है कि बाबा की जो चाहना है, मैं हरेक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, तो मैं आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ और अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण तथा शासन कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हमें स्थित रहना है, तो उससे क्या होगा? ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय मस्ती में हम सदा रहेंगे। उससे क्या होगा? हमारे जीवन में अलौकिकता आने लगेगी। कर्मातीत स्थिति के समीप हम जाते रहेंगे, कर्मों के प्रभाव से न्यारे, कर्मेंद्रिय के भान से न्यारे रहने के लिए ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें करते रहना है। क्योंकि जो गृहस्थी में रहते हैं, उन्हों ऊपर बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, उनको बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान का जो लक्ष्य है प्रवृत्ति में रहना और जीवन पवित्र बनाना, वो गृहस्थ में रहने वाले ही उसका प्रमाण देते हैं, इसलिए उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए क्या करना है, धारणा मूरत बनकर रहना है। धारणा मूरत बनने के लिए ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। जितना ज्ञान की गहराई बढ़ती है, योग की गहराई बढ़ती है, उतने हम धारणा मूरत बनते जाते हैं। धारणा शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो धारणा अर्थात दिव्य गुणों को धारण करना, और दूसरा है धार ना अर्थात ज्ञान की तलवार पर धार ही नहीं है, योग का जौहर ही नहीं है, तो हमारा जो ज्ञान देने का रोल है उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए ज्ञान की गहराई जितनी बढ़ती है उतनी हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती है, रियलाइजेशन पावर बढ़ती है। इसलिए हर रोज मुरली बहुत अच्छी तरह से पढ़कर उस पर मनन चिंतन करना है, बाबा के ज्ञान के गुह्य राज और साज समझते जाना है और ज्ञान के बल को बढ़ाते जाना है, और साथ साथ योग की गहराई को भी हमें बढ़ाना है। योग की गहराई बढ़ाना अर्थात शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना, क्योंकि बाबा ने पिछले सीजन में इशारा दिया है कि वर्तमान समय के अनुसार ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास या शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवेरे शाम जो थोड़ा सा योगाभ्यास करते हैं, जो शक्तियां हमारे पास जमा होती हैं, वो शक्तियां हम अपने लिए ही यूज करते हैं, शक्तियों का कलेक्शन, शक्तियों का बैलेंस नहीं होता है, इसलिए आत्मा की बैटरी चार्ज भी नहीं होती है। जो शक्तियां प्राप्त करते हैं वो यूज करते हैं, तो इसलिए अथाह शक्तियां बाबा से हमें मिलती रहें, उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। तो शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने के लिए जितनी जितनी उपराम स्थिति रहती है, परम धाम वृत्ति रहती है, तो इस दुनिया से न्यारे होकर बाबा के प्यारे हम अनुभव करते हैं। कहते हैं जितना इस दुनिया से वैराग होता है उतना परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता जाता है, और जितना प्यार बाबा से बढ़ता जाता है तो बाबा के साथ जब कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करते हैं, लीन अवस्था की अनुभूति करते हैं, तो प्रेम स्वरूप याद शक्तिशाली स्वरूप याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती है और शक्तियों का बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव होता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें, लेकिन इसके साथ एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी है, शुद्ध प्रवृत्ति बनाने के लिए सदा हमें निर्विघ्न रहना है और साथियों को निर्विघ्न रखना है। क्योंकि विघ्न कहते हैं, विघ्न जब आते हैं तो बहुत दिवाला हमारा निकलता है, तो उसमें बहुत एनर्जी आत्मा की नष्ट होती है, व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों का तूफान हमारे मन में उठता है, उससे हमारी स्थिति लड़खड़ा जाती है। इसलिए निर्विघ्न रहने के लिए हमेशा स्वमान रखना है कि मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। बाबा के सभी बच्चे गणेश हैं, तो गणेश की पूजा निर्विघ्न रखने के लिए की जाती है, तो हमें इस स्वमान में रहना है, मैं निर्विघ्न विघ्न विनाशक गणेश हूँ। और इसके साथ विशेष ध्यान देना है, लौकिक दुनिया में रहते हुए सहन शक्ति का कवच पहनकर रखना है। एक स्लोगन याद रखें, सहना आत्मा का सच्चा गहना है। जितनी बड़ी सहन शक्ति होती है उतनी बड़ी महान विभूति वो कहलाती है। जब हम सारे दिन भर में सहन शक्ति का कवच पहनकर रखते हैं, तो माया हमारे सामने विघ्न रूप में आ नहीं सकती है। इसलिए इस स्थिति को हमें बनाना बहुत जरूरी है। और विशेष पवित्र प्रवृत्ति बनाने के लिए पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना है। उसके लिए ऐसा समझे, मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ, घर मेरा मंदिर है, और इस घर रूपी मंदिर में मैं चैतन्य देवता रहता हूँ और दिव्यता के वाइब्रेशन फैलाता हूँ। इस स्मृति से रहेंगे तो पवित्रता के वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरह से आपके प्रवृत्ति में फैलते जाएंगे और आपका घर आश्रम गृहस्थाश्रम के रूप में सभी अनुभव करेंगे। अड़ोसी पड़ोसियों पर विशेष बहुत दिव्यता की अलौकिकता की छाप बढ़ेगी और बाबा के सेवा के लिए आप उदाहरण मूरत बनेंगे, क्योंकि जो उदाहरण मूरत बनते हैं वही उद्धार मूरत बनते हैं। अनेक आत्माओं को ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की करने की प्रेरणा देते हैं, और जितनों को प्रेरणा देते हैं उतनों का उद्धार करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा एक बुद्धि में बात रखनी है, मुझे बाबा के म्यूजियम का सैंपल बनना है, मुझे उदाहरण मूरत बनना है, मुझे आदर्श मूरत बनना है। तो आदर्श मूरत अर्थात सबको आदर देने वाला और सदा स्वयं को भी आदर देने वाला, अर्थात स्वमान में रहकर सबको सम्मान देने वाला। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सदा स्वमान में रहें और सबको सम्मान देते रहें। दादी जी ने जाते जाते यही मैसेज दिया, दादी जी से प्यार है तो ये दो शब्द अपने जीवन में धारण करो, सदा स्वमान में रहो जिससे आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी, और सबको सम्मान देते रहो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखो, तो बहुत आपसे प्यार स्नेह आपका बढ़ता जाएगा और ये सुंदर गुलदस्ता दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। इसलिए शुद्ध प्रवृत्ति बनाने के लिए विशेष हमें ध्यान देना है और एक बात और अपनानी है कि जब भी हम लौकिक क्षेत्र पर कर्म करने के लिए जाते हैं, लौकिक जॉब करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, उस समय हम सोचें कि मैं बाबा के लिए ये लौकिक कार्य कर रहा हूँ, बाबा इसका मालिक हैं, मैं तो केवल कर्म करने वाला हूँ, तो ऐसा भाव होगा तो आपके कर्मों में न्यारापन होगा और उस समय ऐसा अनुभव करें कि मैं फरिश्तों का अवतार हूँ, बाबा ने मुझे फरिश्ते के रूप में इस संसार में भेजा है, कर्म क्षेत्र पर रहकर मैं फरिश्ता विचरण कर रहा हूँ। तो जैसी हमारी आंतरिक स्थिति होती है वो हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देती है। तो लोग कहेंगे ये लोग जो हैं ये अल्लाह लोग हैं, ये कोई अलौकिक फरिश्ते हैं। वैसे ही श्वेत वस्त्र तो पहना दिया है बाबा ने हमें, लेकिन आत्मा को जो वस्त्र पहनाया है शरीर का वो भी फरिश्ता स्वरूप का मैंने पहनाया है, दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर मैंने धारण किया है। ऐसे फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो बहुत आपके स्थिति में परिवर्तन आता जाएगा। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, उपराम है, शक्तिशाली है, तो जहाँ हम जाते हैं आत्मा का आभा मंडल, आत्मा का ओरा ऐसे ही वाइब्रेशन फैलाता रहता है और हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव जो संगी साथी हैं उन्हों पर स्वतः ही पड़ता रहता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी प्रवृत्ति में अलौकिकता लानी है। तो बाबा हमेशा परम धाम से देखते हैं और जो बच्चे ऐसे सैंपल बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण मूर्त बनते हैं, उन्हों पर वो स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी करते हैं और ऐसी आत्माएं स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बनती जाती हैं, क्योंकि हम सभी ने ये तीन सर्टिफिकेट जरूर लेना है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय। तो इसके लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति अपनाना। तो अभी हम बहुत पावरफुल स्थिति का अभ्यास करना चाहते हैं। 15 मिनट ऐसी उपराम स्थिति में स्थित होकर बाबा के पास अलौकिक दुनिया में विचरण करेंगे, बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे स्थिति का। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, ऐसा ही अनुभव करेंगे हम अमृत वेले 4 बजे के योगाभ्यास के लिए बैठे हैं। थोड़ी पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो, बिल्कुल योग की मुद्रा में सभी बैठेंगे, कोई भी आंखें बंद नहीं करेंगे, झुटका नहीं खाएंगे, बिल्कुल मस्त और चुस्त होकर सुंदर गहराई का योगाभ्यास हम करेंगे। ओम शांति, सभी बोलो ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के दिव्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ, पवित्रता का प्रकाश पवित्रता का सुंदरता अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह न्यारी और निराली फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यहाँ, ओहो, फरिश्तों के बादशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूँ, लहरा रहा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु स्वरूप आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। प्यारे परम धाम में पहुँच गई हूँ। कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा घर परम धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर, बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अप्रचंड स्रोत हैं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से निरंतर शक्तिशाली किरणों की, प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा, अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से निरंतर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जो मैं आत्मा सुख के सागर भगवान के सानिध्य में कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, आ रही हूँ, और इस साकारी शरीर में ब्रुकटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मेरे मस्तक पर, मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। शक्तियों की किरणें चारों ओर फैला रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान भी ज्योति बिंदु निराकार हूँ। ज्योति बिंदु निराकार हूँ, ज्योति बिंदु निराकार हूँ। ओम शांति शांति।